नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान दो चरणों में हुआ था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंज्याल ने बताया कि मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
टोटल हमारे 46 काउंटिंग सेंटर्स हैं, जहां बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना की जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स सीसीटीवी वीडियोग्राफी से फुली कवर्ड हैं और कल 8 बजे से मतगणना का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 9:15 से हम लोग के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जब तक कम्प्लीट नहीं होगा तो चलता रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली बम ब्लास्ट की निंदा करते हुए घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मुर्मू ने बोत्सवाना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। इससे पहले बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत को आज प्रतीकात्मक रूप से चीते सौंपे। इस अवसर पर गैब्रॉन के पास नेचर रिजर्व में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और सुचारू व्यवसायिक संचालन सुनिश्चित होगा तथा भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम से निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और एमएसएमई पहली बार निर्यात करने वाले तथा श्रम प्रधान क्षेत्रों की मदद करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया में कहा कि देश सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की भावनाओं का सम्मान करता है। अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया है। संघीय कार्यों के लिए अस्थायी धन मुहैया कराने से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर करने के बाद ये शटडाउन समाप्त हुआ। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच 43 दिनों से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए सीनेट ने इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दी। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो पूर्व शीर्ष सहयोगियों के मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की घोषणा की है। न्यायाधिकरण ने कहा कि ये मामला पिछले साल जुलाई में हुए जन विद्रोह के दौरान कथित अपराधों से संबंधित है, जिस कारण अगस्त में आवामी लीग सरकार के गिरने से पहले व्यापक हिंसा और राजनीतिक अशांति फैली थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक ने आज फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता अपलोड करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये विश्वविद्यालय न तो मान्यता प्राप्त है तथा न ही मूल्यांकन और प्रत्यायन के साइकिल वन के लिए स्वेच्छा से शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है कि ये अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है जो परिसर में 3 कॉलेज चला रहा है। परिषद ने कहा कि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और अभिभावकों, छात्रों तथा हितधारकों को गुमराह कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र ने वित्त अधिनियम 2025 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि और वेतन आयोग संशोधन जैसे सेवानिवृत्ति के बाद लाभ वापस लिए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल से कोलकाता में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।